जय मां। पहले सफरिंग ऑफ साधक्स में ले लेता हूं, एक इंपॉर्टेंट कई बालक पूछते हैं कि साधक क्यों पीड़ा सफर करते हैं, खासकर यहां आते हैं उनको पता चलता है पवित्र दा या नलनी दा या बहुत सारे साधक हैं, डिवाइन मदर हरसेल्फ, पीड़ा क्यों होती है उनको। ये अंतर ये है, अगर आप एक साधक के जीवन से पूछेंगे तो कहेगा भैया ये एक तौलिया ओढ़ा है, इसको मैं कभी भी ड्रॉप कर सकता हूं। दे आर नेवर बाउंड टू दैट सफरिंग। साधक की पहचान यही है। अंतर क्या होता है, साधारण जीवन में अज्ञान में हमें सफरिंग ने ओवर पावर किया होता है। एक्सट्रीम केस क्या होता है, अरे कितना पीड़ा है, जीवन कैसा है, संसार कैसा है, भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन पीड़ा से पूरी तरह ढके हुए हैं ऊपर से नीचे तक। साधक का क्या हाल होता है, मतलब साधक मतलब जो काफी आगे की चीज है, वो इन सब चीजों पर, संसार की फोर्सेस पर वो सर्फिंग करता है, वेव सर्फिंग। आपको अगर एक क्षण को लगेगा कि ये तो अरे वो आई बड़ी सी वेव और उसको निकल गई, कोई नहीं निकली है, अगले क्षण बाहर आएगा, वो सब सर्फ करेगा, वेव सर्फिंग करता है। सफरिंग बिकम सर्फिंग। तो वो क्यों करता है, क्योंकि वो भगवान का काम अगर आपको करना है, संसार में आप उतरोगे, बहुत सारी चीजें आपको कंटेमिनेट करेंगी, संसार का अपना एक प्रोसेस है, अंदर में वो पूरी तरह उससे मुक्त होता है। इसके कई उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, पवित्र दा की बात हुई है, नलनी दा की बात हुई, नलनी दा तो कहते हैं आई हैव टू टेक अपॉन माई सेल्फ द कॉस्मिक कर्मा, दे टेक अपॉन देमसेल्व्स। तो वो एक बिल्कुल अलग सफरिंग है, जब आप कोई चीज इसलिए कर रहे हो, ले रहे हो क्योंकि वो भगवान का कर्म है, तो अंदर में सदैव आनंदित होते हो, बाहर आपकी जो भी अवस्था हो, इनवर्डली यू आर ऑलवेज इन डिलाइट, यू आर ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, एंड इफ यू विश यू कैन कट इट लाइक दिस एंड कम आउट, बट यू लेट इट गो थ्रू अ प्रोसेस। तो वो सफरिंग से आसक्त जुड़ना, भयभीत होकर के, ये एक अवस्था है। दूसरा उससे मुक्त रहना, ऊपर उठे रहना, एक दूसरी अवस्था है। तीसरा औरों की भी सफरिंग अपने अंदर आत्मसात कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि वो डिवाइन मदर क्लियर कर देंगी। तो ये अंदर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब आता है ये प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, क्या है सफरिंग में अपने, नहीं नहीं उनका प्रश्न है हेरिडिटी, मतलब ये जो अब यहां बीमारी की बात है, बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, तो बहुत वो लंबा विषय है, बहुत सारे कारण कौन कौन से होते हैं। एक होती है फिजिकल लेवल पे हेरिडिटी का बहुत बड़ा एक योगदान है, फोर्स ऑफ हेरिडिटी। फोर्स ऑफ हेरिडिटी क्या होती है, शेरविंद ने वर्ड यूज किया फोर्स ऑफ हेरिडिटी, वो जीन्स के थ्रू काम करती है। अब ये फोर्स ऑफ हेरिडिटी, इसके द्वारा प्रकृति ने सीमाएं निर्धारित की हुई है जड़ तत्व में। फोर्स ऑफ हेरिडिटी के कारण एज लाइफ स्पैन होता है, आप कितना भी कर लो रावण हिरण्यकश्यप सब कर करके अंत में लोग भागते हैं डॉक्टर हमको बचा लेगा, कई बार तो आश्चर्य होता है भैया सॉरी हाँ 80-85 हो गए ना, जीवन मीनिंगफुल रहा कि नहीं, यही प्रश्न करना चाहिए 90 के बाद हम लोग वैसे भी वो लीज पर चलते हैं, ये इसलिए नहीं कि हमको मृत्यु से वो करना चाहिए लगाव, नहीं ये नहीं है, किंतु आप फैक्ट चेक कर लो, ये एक फैक्ट चेक है कि आप दुनिया के बेस्टेस्ट टॉप मोस्ट रिसर्च हॉस्पिटल में भी एक पॉइंट के आगे नहीं जा पाते, कोई ना कोई कारण मृत्यु ढूंढ लेती है। आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी डाइट ले रहे हो, सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर पड़ते हो। तो जड़ जगत की जो शक्तियां एक्ट करती है उसमें फोर्स ऑफ हेरिडिटी बहुत स्ट्रांग है, और आजकल तो उस पर बहुत कुछ बात हो रही है, लगभग सभी चीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, सब में वो जेनेटिक लोडिंग देखते हैं, मेंटल इलनेस सब में कहीं ना कहीं उसका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है, पर है। अब प्रश्न है कि क्या इसको ग्रेस बदल सकती है, निस्संदेह, लेकिन यह सबसे कठिन कृत्य है, क्योंकि जड़ तत्व को बदलने का जो काम है केवल और केवल मां श्री अरविंद ने इस काम को अपने अंदर लिया हुआ है। और उसके लिए जो व्यक्ति है जिसके अंदर इस चीज को बदलना है, उस इस प्रश्न का जो तीसरा भाग है वो भी मैं ले लूंगा, तो उसके लिए आपको बहुत एंड्योर करके जाना है। आपकी भाग्य की रेखाएं ये सब एवरीथिंग कैन चेंज कंप्लीटली, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज। इसमें कई कहानियां जो जुड़ी हुई हैं इससे रिलेटेड, मैं स्वयं जानता हूं कि वो कैसे जो चीजें बिल्कुल आपको लगती हैं असंभव हैं क्योंकि वो हेरिडिटी प्रॉब्लम है, वो चली जा सकती है। लेकिन ये नहीं कि ये सॉल्यूशन आप किसी को भी पकड़ा दोगे कि भाई माँ की ग्रेस, माँ का नाम जप करो ठीक हो जाओगे, ये ऐसे नहीं वर्क करती है चीजें। कोई भी रास्ते में अचानक मिल जाए, अरे हेरिडिटी कोई बात नहीं, भगवान माँ का नाम लो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि वो अभी यम के विधान के अधीन है, अज्ञान में है, उसको आप सडनली हायर लॉ नहीं ओपन करेगा, वो डोर ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन है नहीं वहां पे। उसके लिए पहले की इस सफरिंग को माध्यम बना लो भगवान की ओर मुड़ने का, ये संभव है। ओके, एक पार्ट। तो दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वही उत्तर है, आइदर और नहीं है, आवश्यकता है तो दवाई लेनी चाहिए, दवाई भी माध्यम बन जाएगी माँ के इंस्ट्रूमेंटेशन का। उसका कारण यह है कि जड़ तत्व जो है उसमें जड़ जगत की जो चीजें हैं वो उस जड़ तत्व ने, प्रकृति ने, मेटीरियल नेचर ने, जड़ प्रकृति ने, चूंकि वो भी है तो माँ ना, माँ के एक रूप है, तो उन्होंने जितनी प्रकार की चीजें जड़ जगत से जुड़ी हैं इंक्लूडिंग डिजीजेज, उतनी उन्होंने कोई ना कोई व्यवस्था जड़ जगत में की हुई है। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है, और यहां तक वो सिद्धांत की कई जगह जहां पे आपको एक रिस्क होता है वहीं पास में औषधि होती है। ये आपको लवकुश की कहानी में भी आएगा और इसमें भी आता है, जहां सांप होते हैं या काटने, वहीं आपको एक पौधा भी होता है, और देखोगे अगर आप उस पौधे को जिसको लोग यूज कर दे उसके पत्ते भी थोड़ा जैसे कोबरा का सिर है, ये काम करती हैं, ये जड़ी बूटियां पहले होती थी अपने हिसाब से और अभी भी वो कार्य करती हैं। तो वो जड़ जगत ने क्यों, उनके अंदर उन्होंने द्रव्य गुण दिए हैं, जैसे कई चीजों के अंदर विष के गुण हैं और विष के गुण भी एक कारण से दिए हैं, उसी विष के गुण के पास में जहां ऐसी चीजें मिलेंगी आपको उसको ठीक करने के द्रव्य गुण जो आपको हील करें ये भी दिए हैं। और ये सेम विधान मनुष्य के अंदर कार्य करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप सारे संसार में ब्लेम कर दीजिए और सॉल्यूशन ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि आप ही के अंदर बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ सॉल्यूशन छिपा हुआ है। एक उदाहरण दे सकता हूं, लोग कहते हैं अरे मेरे परिवार में इससे ये व्यक्ति मुझे बड़ा सताता है, बहुत होता है ना, अब परिवार कैसे चेंज करेंगे, मैं यहां भाग जाऊं वहां चला जाऊं या चली जाऊं, महिलाएं ज्यादा पीड़ित होती हैं। सच में समस्या क्या है, आपकी आसक्ति है ना, समस्या आसक्ति है। आप उसको नहीं काटोगे तो वो आसक्ति दूसरी जगह बीज लेके उग जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जड़ तत्व के अंदर भी द्रव्य गुण होता है और निश्चित रूप से उसका उपयोग करना चाहिए, व्हाई नॉट। एलोपैथी में उसी द्रव्य गुण को एक्सट्रैक्ट किया गया है, ऐसा नहीं कि एलोपैथी दवाइयां सब बेकार हैं। हां ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही गलत दिशा, पैसों के पीछे चली गई, ये सच बात है, परंतु ये भी सत्य है कि आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हम लोग भूल चुके हैं। अभी हम लोग, आपको खांसी जुकाम है, अच्छा ये दवाई ले लीजिए जैसे खांसी ठीक हो जाएगी, इस तरह से हम लोग अभी चीजों को ट्रीट करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। तो आयुर्वेद बहुत डीप नॉलेज है जिसको हम भूल गए हैं, एलोपैथी उसी का एक तरफा डेवलपमेंट है, और नेचुरली अब तो मार्केटिंग के चक्कर में बहुत सब गड़बड़ हो गया है। इट हैज बिकम ए मींस इवन टू डिस्ट्रॉय, जो अब वैक्सीन के साइड इफेक्ट सब लोग बता रहे हैं ओपनली, ऑटिज्म के केसेस बढ़े हैं, हाइपर एक्टिविटी बढ़ी है, हार्ट डिजीज, सडन डेथ्स, ये सब आई हैं तो 3-4 साल में लोगों को पता चल रहा है। तो लेकिन फिर भी आप यूज करिए, खासकर अगर फेथ है, एलोपैथी दवाई यूज करने कोई परहेज नहीं है, पर जो जनरली स्ट्रांग और वायलेंट रेमेडीज को अवॉइड करना चाहिए। क्यों स्ट्रांग और वायलेंट रेमेडीज को? क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो आपके शरीर के अंदर भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स होती है, और कोई दवाई अगर उसको ओवर पावर कर दे और सारा वो विनाश लीला प्रारंभ कर दे कीटाणुओं का, तो आपकी जो एक नेचुरल इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती। यही हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि आके वो पहले ढूंढते हैं कि पानी कहाँ है, क्योंकि वहां उनको आदत है पूरा फिल्टर हो गए साफ होके वो पानी पीने की, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी खत्म हो गई है, परेशान हो जाते हैं अगर बिजली नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब तो खैर अब आ गया है सब जगहों पर, लेकिन ये जो एक बहुत स्ट्रांग मेडिसिन, खासकर कैंसर वगैरह में जब दर्द होता है तो लोग बहुत स्ट्रांग पेन किलर देते हैं, स्टन हो जाती है आपकी चेतना। हम लोग क्या कहते थे ये सबसे, हम लोग तो बचपन में सब चीजें देखी, क्या कहते थे हम? भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवत गीता, कितना सुंदर तरीका है छोड़ने का। पेन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, तो पेन की टॉलरेंस ऑलमोस्ट निल हो गई है। तो सिंपल जेंटल मेडिसिन, बहुत स्ट्रांग और वायलेंट रेमेडी जो आजकल आ गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके शरीर में वो इस तरह की चीज है जैसे पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने सहारा देते देते अब वो क्या है ना, वो जरा सा विड्रॉ करते हैं तो एक कटोरा लेके खड़े हो जाते, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ डेवलप ही नहीं किया। तो दवाई पर पूरी तरह आश्रित हो जाना जो कई जगहों पे मैं देखता हूं, ये बहुत खतरनाक चीज है। बेयर कॉल फॉर द ग्रेस, सरेंडर, टेक द मेडिसिन, सिंपल जेंटल मेडिसिन, एंड देन लेट द होल प्रोसेस गो थ्रू ए हीलिंग। हीलिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फटाफट नहीं होती कई बार, लेकिन जब नेचुरल हीलिंग होती है तो काफी कंप्लीट होती है।